देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी, कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी, पता लगा ले पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे, खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे, सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले।
ओम शांति। एक बहुत वृद्ध महिला एक दिन आईना देखती है और जैसे ही आईना देखती है उसे पता चलता है उसके सिर पर केवल 3 ही बाल बाकी है। सोचती है अब क्या करूं, तो 3 बालों की चोटी बना देती है। और फिर सारा दिन बड़ी खुशी से रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अचानक आईना फिर देखती है, तब उसे पता चलता अब 2 ही बाल बाकी है। तो कहती है अब क्या करूं, सेंट्रल पार्टिंग हेयर स्टाइल, आधे बाल इधर आधे बाल इधर, उसको कहते हैं सेंट्रल पार्टिंग हेयर स्टाइल। वो कहती है सोचती आज मैं ये वाली हेयर स्टाइल करूंगी, आधे बाल इधर और आधे बाल इधर, और बहुत कुछ हो जाती है। और सारा दिन और कुछ दिन बड़ी खुशी से बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से आईना देखती है, तो पता चलता है अब 1 ही बाल बाकी है। सोचती अब इसका क्या करूं, पोनी टेल हेयर स्टाइल जिसमें एक चोटी बांधी जाती है और पीछे बाल लटकते हैं। कहती है आज एक चोटी बांधती हूं, और फिर बहुत खुश हो जाती है। और सारा दिन और कुछ दिन बहुत मजे से बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर आईना देखती है, अब एक भी बार नहीं रहता, कहती अच्छा हुआ रोज रोज की कंघी करने की और बाल बनाने की झंझट से छूटी, और बहुत खुश हो जाती है और सारा दिन बहुत ही खुश रहती है और हमेशा के लिए खुश रहती है। क्या किया इसने, एक तो आईना देखा और देखने के बाद जो दिखा उसको स्वीकार भी किया, और स्वीकार करने के बाद उसे परिवर्तन करने की कोशिश भी की, और परिवर्तन के बाद खुश भी रही, चाहे तीन बाल थे चाहे दो, एक या कोई भी नहीं, सभी परिस्थितियों को देखा समझा परखा जाना, आत्मचिंतन, और उसी अनुसार स्वयं को बदला, और जीवन की जो खुशी थी उसे जाने नहीं दी। आज सुबह की साकार वाणी, मुखड़ा देखते प्राणी दर्पण में, खुद देख ले तेरी क्या कर्म कहानी है, खुद देख ले क्या पुण्य है क्या पाप है, खुद देख ले तेरे दामन में कितने दाग है, दुनिया के आंगन में तेरा ये नाटक ज्यादा नहीं चल सकेगा, कब तक स्वयं को छलोगे, कब तक स्वयं को धोखा दोगे, इसलिए हे प्राणी स्वयं का मुख देख। तो आज की सारी मुरली इसी पर आधारित है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मुखड़ा देख ले प्राणी। सारी मुरली में 8 मुख्य प्रश्न आए हैं। बाबा ने कहा स्वयं स्वयं की जरा जांच कर लो। मुरली की शुरुआत ही क्या है, जरा अपनी जांच कर लो, जरा अपने आप को देख लो, आत्म मंथन, आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन, आत्मदृष्टि, स्वयं स्वयं को देखो क्या हो रहा है, क्या पाया है क्या खोया है। 8 मुख्य प्रश्न है, एक एक प्रश्न को लेंगे और अपनी गहराई से जांच करेंगे, जितनी जांच गहरी होगी परिवर्तन उतना पक्का होगा। अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, डबल विदेशियों से मुलाकात, सूक्ष्म रियलाइजेशन करो, क्या करो, सूक्ष्म रियलाइजेशन करो। बाबा ने कहा प्रतिज्ञाएं बहुत कर ली, फाइल तो बहुत भर गई है, अब फाइल को फाइनल करो। बाबा को ऐसा था वैसा था ये भाषा पसंद नहीं है, टालने की भाषा पसंद नहीं है। 8 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है, आज सारे दिन भर पाप किया या पुण्य, पाप कितने किए और पुण्य कितने किए, रात्रि अपनी जांच करनी, या दिनचर्या में कई बार अपनी जांच करनी, स्वयं को ही देखना कि आज जो कुछ किया वो पुण्य था या पाप, और उसके लिए पुण्य क्या है और पाप क्या है ये जानना आवश्यक है, पाप की परिभाषा क्या है और पुण्य की परिभाषा क्या है। द्वापर से मनुष्यों ने पाप और पुण्य की चर्चा की है, हर धर्म ने पाप पुण्य की चर्चा की है, हर धर्म ने बड़े पाप छोटे पाप बताए हैं. द सेवन कार्डिनल सिंस ईसाई धर्म में आते हैं, सात मुख्य पाप. इस्लाम में आता है गुनाहे कबीरा, अर्थात बहुत बड़े पाप. हिंदू धर्म में पातक, अतिशय बड़े पाप. ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं पाप की और पुण्य की. पाप किसे कहेंगे और पुण्य किसे कहेंगे, ये सोचने का विषय है और हर व्यक्ति गहराई से इसे सोचे, पाप क्या है और पुण्य क्या है. और सबसे सरल परिभाषा है, पुण्य अर्थात वो सारे कर्म जो होश में किए जाते हैं, पाप अर्थात वो सारे कर्म जो बेहोशी में किए जाते. जब अंदर होश है तो अपने आप पुण्य घटित होगा, जब अंदर बेहोशी है तो बाहर जो कुछ होगा वो सब कुछ पाप ही पाप होगा. अंदर से चेतना सोई है, घर का मालिक सोया है, चोर आकर चोरी कर जाएगा. एक बहुत पापी व्यक्ति किसी गुरु के पास पहुंचता है, कहता है मैं क्या करूं, ऐसा कोई पाप नहीं है संसार का जो मैंने किया नहीं, क्या आप मुझे स्वीकार करोगे. वो गुरु कहता है भगवान ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं. वो कहता है पर मैं जुआ भी खेलता हूं, पर मैं शराब भी पीता हूं. अब आप मुझसे कहोगे ये सब छोड़ दो, वो मुझसे नहीं होगा, पर मैं आपकी शरण में आया हूं, पर ये मैं छोड़ने वाला नहीं, मुझसे छूटता ही नहीं. अब आप बताओ मैं क्या करूं. गुरु कहता है मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा ये छोड़ो या वो छोड़ो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं, पर क्या तुम मेरे लिए एक चीज कर सकते हो. वो कहता है हाँ, जब भी कोई पाप कर्म करो, जब भी कोई ऐसा कृत्य करो तो सोचो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस इतना काम करना, फिर तुमको जो करना है वो सब जारी रखना, पर हमेशा सोचना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं. कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति फिर आता है, गुरु पूछता है कैसे चल रहे हैं तुम्हारे पाप कर्म. वो कहता है पाप कर्म, जब भी कुछ करने गया आपकी आंखें घूरती रहती थी, कैसे करूं कर ही नहीं पाया. निरंतर अंदर होश था, निरंतर अंदर जागृति थी, निरंतर अंदर ये बात थी कि कोई हमें देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, हम विश्व के स्टेज पर है, सारी दुनिया हमें देख रही है, चाहे बंद कमरा हो या घना जंगल या कोई वीरानी, परंतु निरंतर बाप की दृष्टि हम पर है और निरंतर सारे विश्व की दृष्टि हम पर है. हम जो करेंगे वो विश्व करेगा, हमसे शुरुआत है. अंदर होश, अंदर जागृति, अंदर एक चौकन्नापन, चौकस वृत्ति, संपूर्ण जागरण, निरंतर ऐसा कोई पल ना हो 24 घंटों में जब हम बेहोश हो जाए. बेहोश होते ही भूल, बेहोश होते ही पाप, ये करना है ये करना नहीं है, इसकी सूची बनाने से अच्छा अंदर होश को लाना है. होश आते ही अपने आप वही होगा जो होना चाहिए, और जब हम बेहोश हो जाते हैं तब कुछ पता नहीं चलता है. उस बेहोशी के क्षणों में, पलों में जो कुछ घटित होता है सब कुछ विकर्म, पाप, दुष्कर्म, श्रीमत के विरुद्ध उल्लंघन. तो कर्म और कर्म से ध्यान हटा देना है और ध्यान केंद्रित करना है अंतर में. अंतर निरंतर होश हो, और सबसे बड़ा होश है आत्माभिमानी स्थिति, और सबसे बड़ी बेहोशी है देह अभिमान। वो बेहोशी आते ही गलतियां चालू होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी गलतियों की एक श्रृंखला। विकर्मों का पहाड़ टूट पड़ता है और चेतना दब जाती है और कुछ समझ नहीं आता है, फिर क्या करे क्या ना करे। तो पहला प्रश्न आज की मुरली से, स्वयं की चेकिंग, स्वयं का निरीक्षण, आज जो कुछ हुआ ये प्रश्न पूछने से अच्छा, ये प्रश्न ज्यादा अच्छा है, होश में किया कि बेहोशी में किया? गड्ढा है, यदि होश में हूं तो गड्ढे में कभी नहीं गिरूंगा, परंतु बेहोशी है, नींद है, तंद्रा है, निंद्रा है, तो न चाहते हुए भी पैर फिसलेगा और मैं उसमें गिरूंगा, और जब जब गिरा हूं उठने में बहुत समय लगता है, फिर जब जब गिरा हूं वापस उसी स्थिति को प्राप्त करना, वापस वही अमृत वेला, वापस वही मुरली चिंतन, वापस ब्रह्मचर्य की वही उच्च धारणा, वापस सेवा का वही उमंग, वही उत्साह, सब खो जाता है एक बार गिरने के बाद। इसलिए सूक्ष्म स्वयं का निरीक्षण, सारे दिन भर क्या मूड रहा, मूड की डायरी, सारे दिन भर फीलिंग्स कैसी रही, फीलिंग की डायरी, सारे दिन भर विचार कैसे रहे, थॉट की डायरी, ये विचार रहे, इस तरह का मूड रहा, स्वयं स्वयं को देखना है, और जो कर्म किए वो किस श्रेणी में आते हैं, क्या उसे श्रीमत कहेंगे, यमन मत परमत से किए हुए कर्म कहेंगे, पाप कर्म कहेंगे, पुण्य कर्म कहेंगे, श्रेष्ठ कर्म कहेंगे, दैवी कर्म कहेंगे, या भ्रष्ट कर्म कहेंगे? भ्रष्ट कर्म करना बंद करो, तुम्हें दैवी कर्म करने हैं। देवताई दिमाग होना चाहिए, 18 जनवरी की साकार मूर्ति, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, देवताई दिमाग होना चाहिए। तो अपने आप को देखना है, ये पहला प्रश्न। दूसरा, किसी को नाराज तो नहीं किया, रंज, सारे दिन भर में हमारे शब्द, हमारे बोल, हमारा व्यवहार, कर्म ऐसे तो नहीं कि जिससे आसपास वाले घायल हो जाए, दुखी हो जाए, किसी को नाराज तो नहीं किया, नाराज कर देना किसी को, दिल तोड़ देना किसी का, और वो व्यक्ति उदास हो जाए, किसी पुरुषार्थी आत्माओं को नीचे गिरा देना भी बहुत बड़ा विकर्म है। जो आत्मा उड़ रही थी, वो पंछी जो आकाश में उड़ रहा था, उसको तीर मार देना, उपहास के तरकश से व्यंग बांध छोड़ देना और उसे गिरा देना, ये भी बड़ा सूक्ष्म विकर्म है। हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, कोई उदास ना हो, कोई नाराज ना हो। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी है जो अपने ही संस्कारों की वजह से नाराज है, हमारा उसमें कोई भाग नहीं, वो अपने ही कारण नाराज है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मनसा सेवा के, शुभ भावना शुभ कामना के, क्योंकि जो नाराजी वो दिखा रही है वो खुद के ही संस्कारों की वजह से। परंतु लक्ष्य यही रखना है कि कोई नाराज ना हो, जितना हो सके श्रीमत अनुसार सबको सुख देना है। किसी को खुश करने के लिए अगर श्रीमत तोड़नी पड़ती है तो शायद वो व्यक्ति भी कभी वास्तविक रूप से खुश नहीं हो सकेगा और हमें भी अंततः दुखी ही होना पड़ेगा। निष्पत्ति दुख है उधर और इधर। दूसरा चेकिंग बिंदु, निरीक्षण का बिंदु है, हमने आज किसी को नाराज तो नहीं किया। तीसरा बिंदु है योग में कितना रहे सारे दिन भर, योग में कितना रहे सारे दिन भर, वियोग रहा या योग रहा। अमृत वेला योग किया, बहुत अच्छा। मुरली सुनी सुनाई, बहुत अच्छा। नुमा शाम का योग किया, रात्रि क्लास किया, योग किया, परंतु दिनचर्या में योग की जो लिंक है, कड़ी है, वो ना टूटे। उसके लिए कुछ विधि बनानी है, और विधि है पहला बीच बीच में शरीर से अलग हो जाना, दूसरा बाबा के पास पहुंच जाना, वरदान लेना और तुरंत नीचे आ जाना एक सेकंड में। ये सारे कार्य छोटे छोटे कार्य है। ऊपर पहुंच जाना, बाबा के पास पहुंच गए, हाथ उसने सिर पे रख दिया, वरदान ले लिया और फिर नीचे। तीसरा उसके पास पहुंच जाना, थोड़ी सी बात करना, वापस आ जाना, उससे संवाद साधना। अगला उसके पास पहुंच जाना, दृष्टि लेना और नीचे आ जाना। छोटा सा अभ्यास है, क्योंकि व्यस्तता सबकी बहुत है, सेवाओं में सभी लगे हैं। बीच बीच में बाबा के पास पहुंच जाना, दृष्टि लेना, पवित्रता की दृष्टि, और वापस आ जाना। कभी कभी बीच में फिर ऊपर चले जाना, परम धाम का अनुभव करके आ जाना। परम धाम की शांति कैसी है, परम धाम का मौन कैसा है, परम धाम की मुक्ति कैसी है, परम धाम का वो तत्व कैसा है। पांच तत्व तो यहाँ के देख लिए, यहाँ के तत्वों का अनुभव, परंतु वो जो तत्व है, वो जो पांच तत्वों से परे का तत्व है, उस तत्व का क्या अनुभव है। गए तत्व का अनुभव किया और आ गए। उसके बाद में बीच बीच में अचानक फरिश्ता बन जाना, फिर आ जाना। उसके बाद में फिर से बाबा के पास पहुंच जाना, धन्यवाद कहना और नीचे आ जाना। धन्यवाद किस लिए, किस लिए धन्यवाद, किस लिए शुक्राना गाना है। क्या क्या तूने दे दिया, क्या क्या तुझसे पा लिया। शिकायतों का पिटारा बंद, और तूने जो दिया और तुझसे जो मिला, और किसी को ना मिला, हमको मिला। अभी अभी जो मुरली चली थी नीचे, उसमें बाबा ने कहा था, बाप अपने स्मृतियों की लिस्ट बनाओ, और सबसे पहली स्मृति कौन सी दी है बाप ने, तुम कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, ये स्मृति दी है। स्मृतियां धन्यवाद का भाव। फिर कभी ऊपर जाना, उसे हाथ मिला के आ जाना, हेलो सब ठीक ठाक है उधर, पूछ के वापस, और उसको कहना यहां सब कुछ ओके है, सब ठीक चल रहा है, यहां पर कोई भी समस्या नहीं, मैं समाधान स्वरूप हूं, संसार के हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं स्वयं समाधान हूं। बाप दादा की आश अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, क्या है, कारण को निवारण और समस्या को समाधान। ये वर्ष न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष, समाधान स्वरूप, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष मनाओ, माया को क्या कर दो, विदाई दे दो, छुट्टी, माया को छुट्टी, हॉलिडे पर भेज दो उसको, तुम्हारी अब हॉलिडे है, कितने दिनों की, इतनी लंबी नहीं। उसको छुट्टी दे दो, कहना जाओ तुम अपने गांव, परिवार वालों से मिल के आना, बहुत काम कर लिया, तो छुट्टी। कभी ऊपर जाना शक्ति अपने अंदर भरना और आ जाना, कभी ऊपर जाना सारे गुण अपने अंदर भरना और आ जाना, कभी यात्रा को अनुभव करना कि मैं आत्मा यात्रा कर रही हूं बाहर, अनुभव। कभी लव में लीन हो जाना। बाप दो प्रकार के बच्चे देख रहे, एक है लवली और दूसरे है लवलीन बच्चे। कल की अव्यक्त वाणी, लव में प्रेम में समाये हुए बच्चे, प्रेम स्वरूप अवस्था स्वतः ही सेवा करेगी, दिलों को समीप लाएगी, अभिमानी को झुकाएगी, शांति का अनुभव कराएगी, प्रेम में आत्मा खो जाएगी, अशरीरी हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। प्रेम स्वरूप, प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण। कल सुनी ना सुबह, सफलता हो जाएगी। स्नेह और सेवा का बैलेंस सफलता का साधन होगा। तो कभी ऊपर जाके प्रेम में खो जाना, कभी मधुबन की परिक्रमा करना, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया, कभी आंगन, कभी डायमंड हॉल, कभी यज्ञ की परिक्रमा, कभी ब्राह्मण परिवार की परिक्रमा, कभी सारे सेवा केंद्रों की परिक्रमा, कभी विश्व की परिक्रमा। परिक्रमा करते रहना है अपने फरिश्ता स्वरूप में, बीच बीच में अपने डिपार्टमेंट की परिक्रमा, भंडारे की परिक्रमा, क्या क्या बनने वाला है आज, पहले ही थोड़ी सकाश वगैरह देके आ जाना। गुजरात वालों को बाबा ने कहा तुम्हें किस सेवा में नंबर वन जाना है, मनसा सेवा में नंबर वन जाना है, वो भाषण करे और हम पीछे से सकाश दे। जगदीश भाई से बाबा ने कल क्या कहा था, पोप को दृष्टि देकर आ गए, तो जो भाषण दे रहा उसी को भी दृष्टि देते रहना कि अच्छा करे, थोड़ा थोड़ा प्रभाव हो जाए, पड़ जाए, सभी को दृष्टि दे दो। कभी मैं आत्मा निराकारी निर्विकारी निरंकारी हूं, कभी समान का अभ्यास, कभी सतयुग में पहुंच जाना, कभी मंदिरों में चले जाना, कभी अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप के समानों में स्थित हो जाना। कितनी सारी चीजें हैं जो दिन में करनी है, दिन में अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम छोड़कर जो व्यस्त दिनचर्या है उसमें अति में अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात कार्य की अति, अति व्यस्तता, उसमें ही अभ्यास करने। तो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या बताया, योग में कितना है, आज सारे दिन भर योगी थे या वियोगी थे, योगी थे या भोगी थे। भोग में डूबे थे या योग में डूबे थे, और जहां भोग है वहां पर योग नहीं, एक ही हो सकता है, भोग या योग। तो तीसरा प्रश्न, आज सारे दिन भर योग कैसा रहा। चौथा प्रश्न, दृष्टि निर्विकारी रही या नहीं रही। जिनकी विकारी दृष्टि होती है उनको क्या हो जाता है, लूले लंगड़े हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, बंदर बन जाते हैं। विकारी दृष्टि, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, दृष्टि से विकार हट जाए। कुमार कुमारियों की भी दृष्टि विकारी हो पड़ती है आज का, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती है, कभी कभी मुरलियों में बाबा ने कहा है। मस्तक मणि को देखते रहो, शरीर में विष है, कभी किसी और क्लास में सुनाई थी, भाई बहन को देखे नौ प्रकार की दृष्टि, बहन भाई को देखे नौ प्रकार की दृष्टि। सबसे पहले भाई, बहन को देखे तो पहला संकल्प ये परम धाम से अवतरित आत्मा है, अभी अभी आई है। दूसरा, ये बहन है। तीसरा, ये भाई है, आत्मा भाई भाई। बहन अर्थात वास्तविक बहन, भाई अर्थात आत्मा भाई। चौथा, ये सतयुग की देवी है। पांचवा, ये द्वापर में मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही है, साक्षात दुर्गा है, काली है, भवानी है, महाकाली है, संतोषी है, वैष्णवी है, लक्ष्मी है, शीतला है, सरस्वती है। तो ये रूप में देखना। उसके बाद में छठवा, ये ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात 100 ब्राह्मणों से उत्तम। उसके बाद में ये बाल ब्रह्मचारिणी है, बाल ब्रह्मचारिणी है। ये भाव रखना। उसके बाद में ये माँ है, जगत माँ, या मेरी माँ है। माता की दृष्टि में कभी भी विकार नहीं हो सकते, भाई बहन की इसमें हो सकते, परंतु माँ बड़ी ऊंची भावना है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को पहली ही रात बिठाया और पूजा की, षोडशी पूजा। जगन माता हो, काली हो, दुर्गा हो, तुम्हारी शरण में मैं आया हूं, मां समझ लिया। उसके बाद में उस वैवाहिक जीवन में कभी विकार का भाव कभी आया ही नहीं, क्योंकि पत्नी को ही मां समझ लिया। और लास्ट, ये बहन फरिश्ता है, ये नौ दृष्टि। और बहने भाइयों को किस दृष्टि से देखे? पहला, ये परम धाम से अवतरित आत्मा है, अभी अभी आई है, अर्थात ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। दूसरा, ये आत्मा भाई है, आत्मा भाई। और तीसरा, ये मेरा भाई है। एक है आत्मा भाई और दूसरा वास्तव में भाई है। जैसा भाई होता है लौकिक भाई, वैसा ये मेरा भाई है। उसके बाद में सतयुग का देव नारायण है साक्षात। उसके बाद में द्वापर का गणेश है, विघ्न विनाशक, संकट मोचन हनुमान, शंकर तपस्वी है, वैरागी है, ध्यान में तपस्या में मगन है। ये दृष्टि निर्विकारी दृष्टि है। उसके बाद में ब्रह्मा कुमार, एक ब्रह्मा कुमार अर्थात कितने ब्राह्मण? 700 ब्राह्मणों से उत्तम ये ब्रह्मा कुमार है। उसके बाद में ये बाल ब्रह्मचारी है। भस्म हो जाए कर देगा, आंख वगैरह खोल दिया तो बाल ब्रह्मचारी है। उसके बाद में फरिश्ता है। और लास्ट, उधर तो कहा था मां समझो, इधर क्या पिता समझेंगे? जिसको पिता समझ में अड़चन है वो ये समझे पूर्वज है। कौन है ये? पूर्वज है, ये पूर्वज आत्मा है। तो नौ प्रकार की दृष्टि बहनों की, भाइयों की तरफ, और नौ प्रकार की दृष्टि भाइयों की, बहनों की तरफ। सारी दृष्टि आप पवित्र है, शुद्ध है। तो चौथा प्रश्न, मुखड़ा देख ले प्राणी में, मेरी दृष्टि कैसी रही? अगर कुदृष्टि है, अगर विकार की दृष्टि है, तो लूला लंगड़ा बनना पड़ेगा और बंदर बन जाओगे। और दृष्टि से भी सूक्ष्म, अंदर चेतना में क्या चालू है, स्मृति कैसी है? अगर स्मृतियां श्रेष्ठ है तो दृष्टि परिणाम है, अपने आप निर्मल पवित्र होगी। दृष्टि विकार स्पर्श नहीं करेगा उस दृष्टि को। तो ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, मेरी अवस्था कैसी रही? मेरी अवस्था आज सारे दिन भर कैसी रही? एक बच्चा अपनी मां के साथ घूम रहा है सागर तट पर, उसकी चप्पल सागर की लहरें आती और बहा कर ले जाती है। मां लिखती है रेत पर अपनी उंगली से, सागर चोर है। सागर के दूसरे तट पर एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है, बहुत मछलियां मिल गई। वो मछुआरा लिखता है सागर के तट पर अपनी रेत अपने उंगली से, सागर सागर पालनहार है। इस तट पर एक व्यक्ति सागर में डूबकर मर जाता है। मां लिखती है सागर हत्यारा है। दूसरे तट पर एक बूढ़ा व्यक्ति निर्धन कमर झुका झुका कर चल रहा है, पैसे नहीं है। अचानक एक सीप और उसमें एक बहुमूल्य मोती मिलता है। लिखता है सागर तुम महादानी हो। थोड़ी देर के बाद इस तट पर और उस तट पर सागर की विशाल लहरें आती है, सब कुछ मिटाकर चली जाती है। सागर को किसी से कोई मतलब नहीं। तुम स्तुति करो या निंदा करो, सागर अपनी स्थिति में अडोल है, सागर अपनी स्थिति में अचल है। अचल स्वविचार में, स्वचिंतन में चलता है, किसी से प्रभावित नहीं होता। स्थिति कैसी हो ऐसी अचल, ऐसी अडोल, क्योंकि कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सागर तो अपनी मस्ती में मगन है, डोल रहा है, लहरें आ रही है, लहरें जा रही है, जो लिखना है लिखो। सागर की विराट लहर आएगी और वो सब कुछ मिटाकर चली जाएगी। सागर भव, सागर की संतान हो, सागर समान। तो स्थिति कैसी हो? सागर समान, बाप समान, अडोल, अचल, हिले नहीं, छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते, ये ऐसा व्यवहार क्यों करते, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें वैसा करना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए। बाप ने कहा बाप को ये भाषा पसंद नहीं है, ऐसी वैसी, ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ। सारे दिन भर अवस्था कैसी रही? मूड ऑफ मूड ऑन, किसी ने कुछ बोला मूड ऑफ उदास, कुछ नुकसान हो गया, डूब गए उदासी में। वस्तुएं हमारे स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तु आएगी, वस्तु जाएगी, व्यक्ति भी आएंगे और शायद चले जाएंगे, हमारी स्थिति हमारे साथ रहेगी। इसलिए स्थिति को पकड़ के रखना है, ऊंचा रखना है, नीचे नहीं आ जाना है। नीचे आने के बाद देख लिया कितना समय लगता है वापस उठने के लिए, कितना पश्चाताप, कितना दुख, कितने परिश्रम, कितनी प्रतिज्ञा है, फिर भी नहीं उठती है। तो स्थिति को ऊपर रखना है। उसके बाद में छठवीं बात, जो दुख देते हैं दूसरों को उनको क्या कहा जाता है? गाजी। रहस्यमय शब्द है, शब्दकोश कहता है गाजी अर्थात बहादुर, वीर, शूरवीर। और बाबा ने गाजी शब्द का प्रयोग निगेटिव अर्थ में किया है, परंतु गाजी वास्तव में उनको कहा जाता था जो इस्लाम धर्म में जो काफिर हो जाते थे, ये मलेच्छ जो मानते नहीं थे, उनकी बड़ी ही निर्दयता से मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। वो जो लोग थे बड़े निर्दयी, उनको गाजी कहा जाता था। इसके लिए बाबा का वो अर्थ भी सही है, राइट है। नृशंस हत्या करने वाले जो दूसरों को दुख देते हैं उन्हें कहा जाता है गाजी। बाबा ने कहा गाजी नहीं बनना है तुमको, तो स्वयं को चेक करो। एक तो दूसरा पॉइंट था, किसी को नाराज तो नहीं किया, वो थोड़ा हल्का है। अभी यहां है, दूसरों को दुख तो नहीं दिया, डूबती रख पर उंगली तो नहीं रख दी किसी के, छुरा तो नहीं भोग दिया अरमानों को, कुचल दिया। किसी को दुख देना, षड्यंत्र करना, कपट करना, गीत में सुना ज्यादा समय तक ये नाटक इस संसार के आंगन में नहीं चलेगा तुम्हारा, बंद करो ये कपट के धंधे, मुखड़ा देख ले प्राणी, दाग लगा है कितना तेरे दामन में, देख ले अपनी कर्म कहानी, मुखड़ा देख ले प्राणी। अपने आप को देख, दूसरों को बहुत देख लिया, खुद को देख, अपने गिरेबान में झांक कर देख क्या है अंदर। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। किसी एक देश का राजा अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का था, बहुत हिंसक, हाथाताई, तानाशाह। लोग त्रस्त थे, क्लांत थे, दुखी थे, और अचानक एक दिन उस राजा का व्यवहार ही बदल गया, एकदम मीठा हो गया और सबसे बहुत अच्छे से बातें करने लगा। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया उसमें। परंतु किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की, पता नहीं ये भी कुछ उसका होगा, और अचानक रंग बदल दे। कुछ हिम्मत करने के बाद, कुछ समय के बाद एक मंत्री ने पूछा कि ये जो परिवर्तन आया कैसा, तो राजा ने कहा ये परिवर्तन मुझ में आया, मैं मानता हूं, और उसका एक कारण है, मैं किस अपने राज्य से घूम रहा था, देखा एक कुत्ता एक लोमड़ी का पीछे कर रहा है, एक जंगली कुत्ता, शिकारी कुत्ता, और उस लोमड़ी का पैर उसने पकड़ा और लोमड़ी तो चली गई नीचे, परंतु पैर को घायल कर दिया, हमेशा के लिए उसको अपाहिज बना दिया। वो कुत्ता फिर शहर बाहर आया, मैं उसके पीछे पीछे गया, एक व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति ने पत्थर उठाया और जोर से उस कुत्ते को मारा, उस कुत्ते का पैर टूट गया। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही घोड़े पर जैसे बढ़ा, घोड़े ने एक लात मारी, वो व्यक्ति नीचे गिरा, उसकी टांग टूट गई, घोड़ा आगे बढ़ा और गिर गया। ये सारा क्रम देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं ये सब जो कर रहा हूं ये सब वापस आ जाएगा मेरे तरफ, इसलिए मैंने उस दिन सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब सत्कर्म करने हैं। और जैसे ही राजा ये सुना रहा था, वो जो मंत्री था अंदर ही अंदर कर रहा था, ओ राजा तो बदल गया है, अब मेरे पास अवसर है, इस राजा के विरुद्ध कुछ कर दूं और इसको हरा दूं और मैं राजा बन जाऊं। और जैसे ही वो जाने लगता है मंत्री, गिरता है, उसकी टांग टूट जाती है, जो सोचा अभी किया नहीं था पर मिल गया। सारे दिन भर गाजी तो नहीं बने, किसी को दुख तो नहीं दिया, षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, कपट तो नहीं कर रहे, योजनाएं तो नहीं बना रहे। जो गड्ढे हम दूसरों के लिए खोदेंगे उसमें हम एक दिन खुद ही गिरेंगे। अंग्रेजी कवि लिखता है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। कैसा जाल हमने बुन दिया कि जिसमें हम खुद ही फंस गए। अनुभव नहीं था जाल बुनने का, पहली बार ही किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा था पहली बार, पर उसी में खुद फंस गए। अब निकालो बाहर, अपने षड्यंत्रों के जाल में चेतना एक दिन खुद फंस जाएगी। तो चेकिंग करनी है, क्या छठवें नंबर की, गाजी तो नहीं बने, किसी को दुख तो नहीं दिया, गला तो नहीं घोट दिया किसी का स्वप्न में, कल्पनाओं में, सूक्ष्म इच्छाओं के रूप में। सातवां, बाप जो कहते हैं जांच करो वो राइट है कि रॉन्ग है, ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है। मुरलियों में कई बार आया, ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, बस बाबा ने कह दिया और मान लिया। नहीं, बाबा ने कहा जज करो, जो मैं सुनाता हूं वो राइट है या दुनिया वाले जो सुनाते हैं वो राइट है। बुद्धि लगाओ, तर्क करो, हर चीज का तर्क करो। वो संशय की अवस्था हम पार कर चुके हैं, यहां संशय के लिए तर्क नहीं कर रहे, ज्ञान को समझने के लिए तर्क किया जा रहा है। इसलिए दो शब्दों का प्रयोग है, एक है संशय, एक है संदेह। संशय खत्म हो जाए, संदेह रह जाए। संदेह अर्थात आश्चर्य का भाव, एक वंडर का भाव। संदेह अर्थात मुझे जानना है, समझना है, इसलिए ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं। इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, इसका इसमें क्या गूढ़ रहस्य समाया हुआ है। बाबा के शब्द शब्द में राज समाये हुए है। इसके लिए चिंतन की अति आवश्यकता है, गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या, सार क्या, असार क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, ये विचार निरंतर बुद्धि में चलने चाहिए। विनाशी क्या, अविनाशी क्या, ये सारे भोग क्या मिला मुझे इनसे, प्राप्ति क्या। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं स्टार अप्रोच। स्टार, एस सिचुएशन क्या है, सोचना एकांत में। टी टास्क, मुझे क्या करना है उसमें, टास्क क्या क्या करना है। तीसरा ए, एक्शन मैंने क्या ली। आर रिजल्ट क्या निकला, एक क्रिया एक सिचुएशन है उसमें ये करना है, ये टास्क है करने की, पर मैंने की क्या, एक्शन क्या ली, और आर रिजल्ट क्या निकला। पेट भरा हुआ है, भूख है नहीं, और अचानक स्वादिष्ट पकवान सामने आ गया, सिचुएशन टास्क खाना कि नहीं खाना, एक्शन खा लिया, परिणाम अस्पताल में भर्ती है। अमृत वेला गया, मुरली गई, उमंग उस दिन की सेवा को छुट्टी, कमजोरी, ये तो स्थूल सूक्ष्म, और स्थूल भी है ही। सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, एनालिसिस करना है, निरीक्षण करना है, अन्वेषण सत्यान्वेषण, अपने आप को देखना है, हर चीज में ये मैंने किया उसका क्या परिणाम निकला। ये है मुखड़ा देख ले प्राणी, सेल्फ एनालिसिस। कर्म था, ये परिणाम निकला अतीत का, अब आगे क्या करना है, सेम रिपीट करना है, वही भूल को बार बार करता है करना है, या भूल भी बनना है, या भूलों का सागर बनना है, रोज नई नई गलतियां। हर दिन सोने से पहले कुछ समय बैठकर अपने किए हुए कर्मों को देखना है कि इसका परिणाम क्या निकला। समय था चिंतन का, क्लास में बैठने का, हमने सोचा नहीं हम नहीं बैठेंगे, हम जाके कमरे में सो जाएंगे, सो गए, कुछ तो मिस हो गया। उमंग आया, मुरली पढ़ ले एक बार, पर फिर सोचा क्या है, सुबह तो सुन ली थी ना, अभी क्या पढ़ना है, कुछ खास था नहीं, पॉइंट तीन चार थी वो नोट कर लिए, अभी और कुछ मिलने की संभावना कम है, शायद हो सकता है कल की मुरली में वो मिल जाए जो हमें चाहिए, आज वो नहीं है, हटाओ, और कोई बोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि हम तो थे, हमने सब लिखा है, दो तीन चीजें याद भी है। राइट किया, रॉन्ग किया, नित्य किया, अनित्य किया, सत्य किया, असत्य किया, सार किया, असार किया, विनाशी किया, अविनाशी किया, नश्वर किया नश्वर किया, सोचते रहना है सारे दिन भर, चिंतन करते रहना है कर्मों के बीच में। लास्ट पॉइंट, ज्ञान रत्नों का दान कितनों को दिया। सारे दिन भर अविनाशी जो खजाना तुमको मिला है वो कितनों को मैंने दिया। ज्ञान दान करते रहना है, ज्ञान देते रहना है। ज्ञान दान में जो खुशी है शायद संसार में और कोई भी स्थूल धन में वो खुशी नहीं है। मनसा से शक्तियों का दान, वाणी से ज्ञान का दान, कर्मों से गुणों का दान देते रहना। अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, तीन प्रकार की सेवा तुमको एक साथ करनी है, ये एडिशन करो। स्नेह सहयोग से कर्म हो, ये एडिशन करो। एक व्यक्ति अंधा जन्मांध दृष्टिबाधित खड़ा था सड़क पर, लंदन की सड़क पर, और देख रहा था कोई आ जाए और मुझे राह दिखाए, और पीछे से किसी ने हाथ रख दिया और कहा भाई क्या मुझे तुम सड़क पार कर सकते हो, मैं अंधा हूं देख नहीं सकता। तो इस व्यक्ति ने कहा क्यों नहीं, और उसको ले गए और पार कर दिया। फिर उससे उसको पूछा तुम्हें कैसा लगा, उसने नहीं, क्योंकि ये जो व्यक्ति था पहला अंधा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लंदन का बहुत प्रसिद्ध पियानो बजाने वाला जॉर्ज शर्लिंग, जिसका नाम कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया, पर बहुत प्रसिद्ध पियानो वादक जो जन्मांध था, पर 50, 60, 70 और 80 की दशक में उसके जैसा पियानो बजाने वाला कोई भी नहीं था, पर वो बचपन से ही देख नहीं सकता था। तो उससे पूछा गया और उसने कहा क्या बताऊं, ऐसी खुशी हुई कि ऐसी खुशी फिर पहले कभी नहीं हुई थी। मैं खुद ही राह ढूंढ रहा था और किसी ने कहा मुझे राह दिखा दो, उसकी मैंने मदद कर दी और इस कृत्य से मुझे बहुत खुशी हुई, ये उसने लिखा। तो मदद करना, सहयोग देना, ज्ञान का दान करना। जैसे एक भिखारी, ये न्यूयॉर्क की कहानी है, एक भिखारी बैठा हुआ है, अंधा है, दिखता नहीं, एक बोर्ड लगा दिया ब्लाइंड प्लीज हेल्प, कोई नहीं दे रहा है उसे कुछ भी। लोग आ रहे, लोग जा रहे, लोग देख रहे, परंतु दे कुछ नहीं रहे। एक व्यक्ति दूर खड़ा है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एजेंट है जो एडवर्टाइज करते हैं। उसने एक काम किया, वो बोर्ड को पलट दिया, वहां एक दूसरा वाक्य लिख दिया और ढेर सारे लोग आकर कुछ कुछ देने लगे। क्या लिखा होगा, कोई तो चतुराई की है, कोई तो चालाकी की, कोई ऐसा एक वाक्य उसने लिख दिया। उसने लिखा कि दिन देखो कितना सुंदर है, तुम लोग देख सकते हो मैं नहीं देख सकता, इट्स अ वंडरफुल डे, यू कैन सी आई कैन नॉट सी, बस इतना लिख दिया और लोग बिल्कुल करुणा के सागर बन गए और उसे देने लगे। तो ऐसी 8 बातें हैं आज सुबह की साकार मुरली से। सबसे पहली, कितने पुण्य और कितने पाप जो कर्म किए हैं वो होश में किए या बेहोशी में किए, या ऐसे ही व्यंग बाण चलाते रहे और आत्माओं को घायल करते रहे और विकर्म करते रहे और पाप करते रहे। और पाप भी ब्राह्मणों के बहुत सूक्ष्म है, मेंटल सिंस, थॉट सिंस, थॉट क्राइम्स। दूसरा प्रश्न, किसी को नाराज तो नहीं किया, रंज तो नहीं किया। तीसरा प्रश्न, योग में रहे या नहीं रहे उसकी ढेर सारी जो बातें बताई। उसके बाद में चौथा, दृष्टि निर्विकारी रही, जो भाई बहन को कैसे देखे और बहन भाई को कैसे देखे। उसके बाद में अगला, अवस्था कैसी रही, सागर में जो जिसको लिखना है तट पर लिखते रहे, कोई लिखे तुम हथियारे हो, कोई लिखे तुम दानी हो, कोई पालनहार, कोई कुछ, सागर अपनी मस्ती में मस्त है। पांचवा, छठवा, गाजी तो नहीं बने। सातवा, जांच करनी है अपने अंदर, बाप जो सुनाते हैं वो राइट है या मैं जो सोचता हूँ वो राइट है। वरदान स्लोगन वरदान में भी है, मनमत श्रीमत, ऑनेस्टी किसको कहते हैं। और लास्ट पॉइंट, ज्ञान रत्नों का दान देते रहे, हमारे मुख से निरंतर ज्ञान का झरना झरता रहे। ज्ञान सुनाने से, ज्ञान की चर्चा करने से, ज्ञान को शेयर करने से ज्ञान के संस्कार निर्माण होंगे। यहां पर व्यर्थ बहुत बोल लिया, व्यर्थ के संस्कार निर्माण हुए, अब ज्ञान निकलने दे तो ज्ञान के संस्कार निर्माण होंगे। मुखड़ा देख ले प्राणी, दर्पण में क्या है तेरे दामन में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति।
देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुख